بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ما يعملون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہنت کرپا شیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، ارثات ان پر کارے بدھ رہتے، تو نسندے وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریے ویبھوتیاں پرابت करते, उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शुक्रवार है, आबान की 7, रबीउल अव्वल की 22 और अक्टूबर की 29 तारीख। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलो हर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे अपना मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रसंघ में ईरानी प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। तेहरान की नमाज जुमा के अस्थाई इमाम ने कहा कि अशांति के अलावा साम्राज्य का कोई लक्ष्य नहीं। एक अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका को अपने वचनों पर अमल करना चाहिए। अमेरिका, सऊदी अरब और अरब इमारात के क्रोध से चिंतित है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। राष्ट्रसंघ में ईरान का वो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया जिसमें सुझाव दिया गया है कि एनपीटी के जिन सदस्य देशों के पास परमाणु हथियार हैं, वे इन हथियारों को नष्ट करने में पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों का पालन करें। परमाणु हथियार अप्रसार संधि एनपीटी के अनुसार परमाणु हथियारों से संपन्न देश इस बात के प्रति वचनबद्ध हुए हैं कि वे अपने समस्त परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। इसी प्रकार ये देश इस बात के प्रति भी वचनबद्ध हुए हैं कि वे न केवल परमाणु हथियारों के निर्माण के संबंध में किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि ये देश परमाणु हथियारों को न तो दूसरे देशों में स्थानांतरित करेंगे और न ही इन हथियारों के निर्माण के संबंध में दूसरे देशों से सहयोग करेंगे। परमाणु हथियारों से संपन्न देश दशकों बाद एक बार फिर इस बात पर प्रतिबद्ध हुए हैं कि वे इन हथियारों को नष्ट करने के संबंध में प्रभावी कदम उठाएंगे। राष्ट्रसंघ की एक समिति में ईरान के जिस प्रस्ताव को पारित किया गया है उसके एक भाग में परमाणु हथियार रहित मध्य पूर्व की मांग की गई है। इसी प्रकार इस प्रस्ताव में इस बात की भी मांग की गई है कि ज़ायोनी शासन परमाणु हथियार अप्रसार संधि एनपीटी का सदस्य बन जाए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जांच की अनुमति दे। इसी प्रकार इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इस बात की गारंटी दी जानी चाहिए कि न तो परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा और न ही इनके प्रयोग की धमकी दी जाएगी।
एक अमेरिकी पत्रिका ने लिखा है कि परमाणु समझौते को जीवित करने के लिए वियना में जो वार्ता हो रही है, ईरान उसमें वापस नहीं आ रहा है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिकी पत्रिका द वीक ने वियना वार्ता में ईरान की पारदर्शिता की ओर संकेत करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि तेहरान वास्तव में इस समझौते का इच्छुक है और अब बाइडेन सरकार की बारी है कि वो परमाणु समझौते में वापस आए और इस समझौते में अपने वचनों पर अमल करे। परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बारम्बार की अपनी रिपोर्टों में कहा है कि ईरान अपने समस्त वचनों के प्रतिबद्ध रहा है। उसके बावजूद अमेरिका मई 2018 में एक पक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकल गया और उसके बाद उसने ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपनाई और इस नीति के अंतर्गत उसने तेहरान के खिलाफ कड़ा से कड़ा प्रतिबंध लगाया। ट्रंप और उनकी सरकार के अतिवादी अमेरिकी अधिकारियों को अपेक्षा थी कि ईरान वार्ता करने और उनकी मांगों के समक्ष घुटने टेकने पर बाध्य हो जाएगा, परंतु अमेरिका की सारी अपेक्षाओं पर पानी फिर गया और जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे तभी उन्होंने देख लिया था कि तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति का कोई लाभ नहीं है। तभी उन्होंने कहा था कि अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए तो ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते में वापस आ जाएंगे। यह समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। आज तेहरान की नमाज जुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद हसन अबू तरावी फर्द की इमामत में अदा की गई। उन्होंने नमाज जुमा के खुतबों में आतंकवादी गुट दाइश को साम्राज्य के कृत्यों का नमूना बताया और कहा कि साम्राज्य देशों विशेषकर इस्लामी देशों के वैध अधिकारों की पूर्ति नहीं करेगा। नमाज जुमा के अस्थाई इमाम ने कहा कि आज के साम्राज्य की गतिविधियां हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर के मुआविया की भांति हैं और अशांति के अलावा उसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की बात व विचार धार्मिक शिक्षाओं में मौजूद है और कुरान और पैगंबर इस्लाम के जीवन शैली में सैकड़ों चीजें हैं जो इस बात के सूचक हैं कि ईश्वरी दूत पैगंबर इस्लाम ने शांति व न्याय स्थापित करने के लिए सरकार का गठन किया। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पैगंबरों और इमामों ने इंसान की मुक्ति व कल्याण के लिए सरकार गठित करने का प्रयास किया और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत व्यवस्था व सरकार के गठन के बिना ईश्वरीय उद्देश्यों को व्यवहारिक नहीं बनाया जा सकता। हथियारों की बिक्री के संबंध में अमेरिका और कतर के बीच जो सहमति बनी है उससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात क्रोधित हैं और उनके क्रोध से अमेरिका चिंतित हो गया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो 50 करोड़ डॉलर के आधुनिकतम सैन्य ड्रोनों को कतर को बेचेगा। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार ये खबर ऐसी स्थिति में सामने आ रही है जब अगले महीने कतर नरेश शेख तमीम बिन हमद अल सानी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिकी संचार माध्यमों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि इस सौदे को लेकर बाइडेन सरकार में मतभेद हो गए हैं। अमेरिकी टीवी चैनल NBC ने रिपोर्ट दी है कि पेंटागन 50 करोड़ डॉलर से अधिक के ड्रोन सौदे को प्रोत्साहित करने के प्रयास में है, परंतु अमेरिकी विदेश मंत्रालय कतर सरकार के साथ हुई सहमति के संबंध में टाल मटोल से काम ले रहा है। इस टीवी चैनल ने अपनी खबर को 3 अमेरिकी अधिकारियों और 1 अमेरिकी कांग्रेस के अधिकारी के हवाले से बताया है, परंतु जिन अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है प्रत्यक्ष रूप से उनके नामों और पहचान की ओर कोई संकेत नहीं किया है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। इसराइल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ग्लोब्स ने सऊदी अरब और ज़ायनी शासन के बीच आर्थिक संबंध बनाए जाने की सूचना दी है। सऊदी लीक्स वेबसाइट के अनुसार समाचार पत्र ग्लोब्स ने अपने गुरुवार के संस्करण में लिखा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ज़ायनी शासन और सऊदी अरब के बीच कूटनैतिक संबंध स्थापित करने के बारे में वार्ता हुई है। समाचार पत्र लिखता है कि इसराइल निर्मित वस्तुओं के लिए सऊदी बाजार के दरवाजे खुलना इसराइल की कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्लोबल के अनुसार सोमवार को सऊदी अरब की पहली फ्लाइट रियाद से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी। इसी के साथ मंगलवार को तेल अवीव से पहली उड़ान सऊदी अरब पहुंची। ज्ञात रहे कि हिब्रू भाषा की एक वेबसाइट ने हाल ही में लिखा कि 27 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने सऊदी अरब की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रियाज में मोहम्मद बिन सलमान से भेंटवार्ता में रियाज और तेल अविव के बीच संबंधों को सामान्य करने के बारे में वार्ता की थी। भारत नियंत्रित कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी छात्रों की तत्काल आजादी की मांग की है। पीडीपी के नेता ने कहा कि तीनों कश्मीरी छात्र अर्रशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी को तत्काल आजाद किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले कश्मीरी छात्रों के बारे में कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारा नहीं लगाया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहर कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई निंदनीय है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि जम्मू और कश्मीर में 2 साल के दमन के बाद की स्थिति भारत सरकार के लिए एक आंख खोलने वाली होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगरा कॉलेज के अधिकारियों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में कोई राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाए गए थे। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण के संबंध में ईरान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पारित होने के बारे में, और फिर बात करेंगे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बारे में,
au cœur de la tempête diplomatique entre Paris et Londres,
और अंत में चलेंगे भारत जहां कश्मीर की ताजा स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज जुमा की सभा पर प्रतिबंध जारी है।
तो सबसे पहले चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं ईरान द्वारा पेश किए गए उस प्रस्ताव की कि जिसने परमाणु हथियारों के विरोधियों और समर्थकों के चेहरों पर पड़ी नकाब को पूरी तरह उतार दिया है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के संवाददाता कामरान नजफजादे एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथ ही कायम रिजवी की आवाज में।
ईरान द्वारा राष्ट्र संघ में पेश किए गए प्रस्ताव के समर्थन में 108 वोट पड़े। अब ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम समिति के सामने है। इस प्रस्ताव में आखिर क्या है? यही कि NPT के सदस्य देशों के पास जो भी परमाणु हथियार है वह उन हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दें।
USA is the number one arms।
ये देश इस बात के प्रति कटिबद्ध हैं कि वे किसी भी तरह के नए परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे और दूसरे देशों को भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नहीं देंगे। इस बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता टिम राइट,
the most important step that countries, all countries in the world can take is to sign and ratify the UN treaty on the prohibition of nuclear weapons.
यह ऐसा सकारात्मक कदम है जो दुनिया भर के देशों को उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियारों के नष्ट किए जाने के पेश हुए प्रस्ताव का पारित होना बेहतरीन कदम है, क्योंकि यही विनाशकारी हथियार हैं जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही मचा दी थी। हमें दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। इस प्रस्ताव के विरोध में 44 वोट डाले गए। विरोध में वोट डालने वालों में अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी शामिल थे। जब राजसंघ में ईरान के राजदूत से पूछा गया कि क्यों इन देशों ने इसके विरोध में वोट दिया, तो उन्होंने कहा, ये इस बात को दर्शाता है कि वे परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल नहीं करना चाहते हैं। ऐसे देश तरह तरह के बहाने भी बनाते रहते हैं। वे कहते हैं कि अभी इसके लिए मार्ग प्रशस्त नहीं है, यानी वे कहते हैं कि अभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने का समय आया ही नहीं है। ये बहाना बनाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जब 1970 में इन देशों ने निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध रहने का वादा किया था, तो इन्हें चाहिए कि वे अपने वादे को पूरी तरह से व्यावहारिक बनाएं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही देश हैं जो वर्षों से ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते रहते हैं। आज वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करें जो उनके विनाशकारी हथियारों को रोक सके। बहरहाल, ईरान द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव 3-4 दिनों में राष्ट्रसंघ की महासभा में अंतिम स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं होगा।
और अब चलते हैं फ्रांस और बात करते हैं लंदन और पेरिस के बीच बढ़ते तनाव की। इस बीच फ्रांस ने तो ब्रिटेन को ताकत के बल पर बात करने की धमकी तक दे डाली है। इस बारे में पेरिस से IRIB के संवाददाता शहसवार हुसैनी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी की आवाज में।
Au cœur de la tempête diplomatique entre Paris et Londres,
फ्रांसीसी नौसैनिकों द्वारा ब्रिटिश मछुआरों की दो नौकाओं को जब्त किए जाने के बाद लंदन और पेरिस के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। फ्रांसीसी जल में समुद्री नियंत्रण कल से कई गुना बढ़ गया है। ब्रिटिश अधिकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और ब्रिटेन की संसद में इस देश के पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की है कि फ्रांस द्वारा उठाया गया कदम निराशाजनक और अनुचित है। एक सहयोगी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं फ्रांसीसी अधिकारी का कहना है कि इस तनाव के लिए स्वयं ब्रिटेन जिम्मेदार है और उसे चाहिए कि अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करे। हमने यूरोपीय कमीशन में इस संबंध में विस्तार से एक रिपोर्ट भेज दी है। हमारे धैर्य की भी एक सीमा है। वहीं फ्रांसीसी मछुआरों के लिए ब्रिटिश लाइसेंस महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। फ्रांस ने अपने 450 मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के परमिट के लिए आवेदन किया है, लेकिन अब तक लंदन के अधिकारियों ने केवल 210 मछुआरों के परमिट जारी किए हैं। इस बीच फ्रांस ने ब्रिटेन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिटिश अधिकारी मौजूदा समुद्री संकट को हल करने के रास्ते में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं, तो मंगलवार 2 नवंबर से ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे।
Il faut parler le langage de la force.
एक फ्रांसीसी टीकाकार का कहना है कि वक्त आ गया है कि ब्रिटेन को ताकत की भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी इसी भाषा को समझते हैं, तभी उनको दूसरों की बात समझ में आती है। फ्रांस के समुद्री मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्रिटिश उत्पादों वाले मालवाहक जहाजों और नावों की जांच में कड़ाई, साथ ही फ्रांसीसी द्वीपों के क्षेत्र में ब्रिटिश मछुआरों की नावों पर पूरी तरह प्रतिबंध और दोनों देशों के बीच सामानों को स्थानांतरित करने वाले ट्रकों की गहन जाँच इन प्रतिबंधों का हिस्सा होंगे। वहीं फ्रांस द्वारा ब्रिटेन के कुछ हिस्सों की बिजली का काटा जाना भी पेरिस द्वारा लंदन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का एक हिस्सा हो। पेरिस द्वारा लंदन पर लगाए जाने वाले संभावित प्रतिबंधों के दृष्टिगत अभूतपूर्व तरीके से ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस के राजदूत को तलब किया है।
शाहसवार हुसैनी, खबरगुजारी से दवासीमा, पेरिस। और अब रुक करते हैं भारत का और बात करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद भी जारी खेल के बारे में। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज जुमा की सभा पर प्रतिबंध जारी है, जिस पर लोगों में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। श्रीनगर में प्रशासन ने एक बार फिर ऐतिहासिक जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद किया और ये कहा कि COVID-19 के हवाले से उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है उसी को देखते हुए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जिस पर नमाजियों ने काफी बरहमी का इजहार किया है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद ऐतिहासिक जामा मस्जिद में कभी कभार ही नमाज होती है और अब उसमें कोविड स्थिति को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग जमा होते हैं इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। अगरचे दीगर जितनी भी जगह है उन पर अब प्रतिबंध हटा दिया गया है, परंतु श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ये प्रतिबंध जारी है, जिसपे धार्मिक दलों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक बार फिर प्रशासन से मांग की है कि वो इस प्रतिबंध को फौरी तौर पर हटाए। इस बीच 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बाद जो स्थिति पाई जा रही है वो इंतहाई गंभीर है और सैकड़ों की संख्या में युवकों पर UAPE के तहत FIR दर्ज कर दिए गए हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी बरहमी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता महबूब बेग ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
नहीं देखिए जहां तक UPA का ताल्लुक है या PSE का ताल्लुक है, किसी भी ऐसे कानून का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट फ्री डेमोक्रेटिक सेक्युलर इंडिया में ऐसे कानून की न जरूरत है न लगने चाहिए किसी भी जुर्म के लिए। क्या ये सही था कि नहीं, वो देखना चाहिए था, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वो क्या ऐसा हुआ। मसलन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे पास भी एक व्हाट्सएप आया जिसमें सेलिब्रेशंस थी, अगर आप देखेंगे वो आपको भी वो व्हाट्सएप आया होगा, वो मैंने देख लिया वो कश्मीरी थे नहीं, वो मैंने देख लिया वो बसेस, यहाँ वो बसेस नहीं हैं, वो होटल्स नहीं हैं, वो प्रोनंसिएशन और एक्सेंट नहीं है, फिर मैंने पता किया वो कश्मीर का था ही नहीं, ऐसे भी सर्कुलेट हुए। इसलिए बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कसूर है कि नहीं, आप सजा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कसूर प्रूव किए बगैर सजा देना, ये बेसिक इंसाफ जो है उसके जो फंडामेंटल्स हैं ये उसके खिलाफ।
उधर जम्मू प्रांत के पुंछ में पिछले 19 दिवस से सुरक्षा बलों और अलगाववादी छापामारों के बीच एक मुठभेड़ जारी है। अभी तक अलगाववादियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई है, परंतु सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वो हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
देखिए ऐसा है कि LC के अंदर चप्पा चप्पा तो कवर नहीं हो सकता, हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हुई हो, अगर आपको पता है तो हमें बताएं, हम यकीनन उनको जहां पे वो जाने के लिए आए हैं वहां हम तेजी के साथ उनको थैंक यू अलविदा कह देंगे। हमारा काम है भाई, अगर आप बाहर के हो कहीं के हो, हथियार पकड़ा है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सिर्फ पुलिस के पास में हथियार उठाने का हक होता है। हमको भी तब हक मिलता है यहाँ पे हथियार उठा के चलने का आबादी के अंदर, जब जहाँ पे खतरा हो, इसलिए हर जगह पे पुलिस आगे चलती है, हम सिर्फ सपोर्ट में चलते हैं उनके।
इधर एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति में बाधा डालने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी और जो भी ऐसे प्रयास करेंगे उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। दीदी मरियम और भैया रविश का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे और सदा की भांति आपके पत्र ईमेल कमेंट्स कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो भैया शुरू करते हैं।
बिल्कुल दीदी, और मैं भी अपने श्रोताओं अपने दोस्तों का हाल चाल मालूम कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। वैसे दीदी जो है वो जल्दी इजाजत हमें नहीं देती हैं बोलने की, और
वैसे
फिर भी
ज्यादा आप ही बात करते हैं।
ये देखिए, दीदी ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं ही सबसे ज्यादा बात करता हूँ। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, मुझे लगता है कि हमारा काम ही बात करना है और दीदी आपके मार्गदर्शन में हमारा काम है बात करना, और हमारे श्रोताओं हमारे दोस्तों का काम है हमारी बातों को सुनना, और बातों को सुनने के बाद हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारी बातें कैसी लगी, इसके ऊपर हमें कमेंट्स संदेश और अपनी राय भेजें और ये हमारे बातों का निष्कर्ष होगा।
जी, तो भैया ईमेल से शुरू कर रहे हैं। ये है पीर सैयद एजाज हैदर, पाकिस्तान से हैं। लिखते हैं कि सेंट्रल चेयरमैन इंटर मुस्लिम एंड इंटरफेथ पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ये मेंबर हैं। लिखते हैं कि दीदी मरियम मेहरदादी, हम आपके कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाते हैं, आप मूल्यवान सेवा कर रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं, काश हम आपके कार्यालय में होते।
एजाज हैदर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका कि आपने हमें बिल्कुल अच्छे से हिंदी शब्दों के साथ संदेश दिया है, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप हमारे कार्यक्रम से लाभ उठाते हुए जहां उर्दू के आप ज्ञानी हैं वहीं आपको हिंदी भी बहुत ही अच्छी आती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आपने आशा करते हैं कि आप कभी ईरान की यात्रा करें, यहाँ की बेहतरीन अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, स्थानों पर जाएं, घूमने की एक से बढ़कर एक जगह है यहाँ पर। और सबसे अहम चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ यह है दीदी, यहाँ पर हमारे पैगंबर इस्लाम के पौत्र इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, तो आप यहाँ भी आएँ ज़ियारत करने, और हमारे कार्यालय में भी हम आपको ज़रूर और ज़रूर निमंत्रित करेंगे।
तो भैया ये सब कोरोना के बाद होगा सब।
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही दीदी ने, ये सब कोरोना के बाद होगा। तो चलते हैं फिर से दीदी मरियम के पास और देखते हैं कि अब आगे का कार्यक्रम क्या है।
जी, संस्कृति से जुड़ी खबर है और हमारा तो वो चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो कलाकार हैं उनके बारे में बता रहे हैं हम।
जी जी,
आज भी हम एक कलाकार के बारे में बता रहे हैं जो इनका नाम है मोहम्मद काजम काजमी। जी, ये 1967 में हेरात में जन्मे। मोहम्मद काजमी एक अफगान कवि और लेखक और फारसी भाषा और साहित्य अकादमी के विश्व सेवा विभाग में एक संकाय सदस्य हैं। वो 1975 में काबुल चले गए और वहाँ अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर वे 1984 में ईरान आए और मशहद के फिरदौसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1986 में साहित्य में अपना करियर शुरू किया और दो साल बाद मशहद के कला मंडल में कविता समूह में शामिल हो गए। इसके बाद काजमी 1990 में अफगानिस्तान की सोसाइटी ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन पोएट्स में शामिल हो गए। कविताएं लिखने के अलावा काजमी कविता सिखाने, ईरान में अफगान प्रवासियों के लिए साहित्यिक मंडलियाँ रखने, प्रेस में समीक्षाएं और लेख प्रकाशित करने और फारसी भाषा और साहित्य पर पुस्तकों के संकलन और संपादन में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कला और साहित्य के अफगान कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है, दो प्रकाशनों के संपादकीय बोर्ड के सदस्य, खुरासान रजवी प्रांत की कला विभाग द्वारा आयोजित कविता समीक्षा और शोध पर एक बैठक के अध्यक्ष और मशहद में कविता सत्र के अध्यक्ष हैं।
तो श्रोताओं और हमारे दोस्तों, आपने सुना कि आजकल दीदी जो है वो अफगान नागरिकों पे ज्यादा मेहरबान है, और क्यों मेहरबान है इसके लिए मैं कारण बताता चलूं जो मेरे मन में है, वो इसलिए कि बहरहाल अफगान जनता जो है वो आजकल बहुत ही पीड़ा से गुजर रही है, तो इसलिए दीदी उनके बारे में बता रही हैं ताकि आप उनकी पीड़ा को कम महसूस कर सके और कम कर सके और उनका साथ दे सके।
कलाकारी के बारे में मैं बता सकूं ये ना समझे
कि मैं यही कहना चाह रहा था दीदी कि ये बहुत ही अच्छा जिसे कहा एक बिंदु है कि
सभी फील्ड में जी
लोग ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान में केवल युद्ध है, वहां पर लड़ाई है झगड़ा, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत ही अच्छी अच्छी हस्तियां, फिल्म जगत से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक जगत से जुड़ी हुई हस्तियां वहां पर हैं जिन्होंने पूरे विश्व में पूरे अफगानिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है।
जी।
तो दोस्तों हमारी बात बीच में कट गई थी, ये कि वहाँ के हालात जो हैं वो अब इधर बिगड़े हैं जबकि पहले के हालात बहुत अच्छे थे। वहाँ पर एक से बढ़कर एक साहित्यकार और अलग अलग मैदानों में क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ गुजरी हैं अफगानिस्तान की। दीदी अब हमारा समय जो है वो मुझे जो आभास हो रहा है कि कमेंट्स का हो गया है।
हाँ, हम तो बातें करते रहेंगे और उनके विचार कमेंट्स बिल्कुल से भूल जाएंगे।
मैं आपको आपके हवाले करता हूँ आपके श्रोताओं के कमेंट्स के साथ में, तो आप बताइए क्या है आज के कमेंट्स।
ईरान क्षेत्र की महाशक्ति है, कुछ देश इसराइल से मदद मांग रहे हैं जो खुद दूसरों की मदद पर निर्भर है। IRGC कमांडर इस पर सैयद यासीन लिखते हैं, हाँ ईरान के पास शैतान अमरीकी आतंकवादियों पर हमला करने की क्षमता है जबकि वे कभी भी 100 किलो की बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ वापस हिट करना चाहते हैं जबकि अब 66% परमाणु सामग्री बनाते हैं। यदि सभी प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाता है तो ईरान अपने रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए 90% परमाणु सामग्री बनाने का अधिकार रखता है। शैतान इसराइल आतंकवादियों को संतुलित करने के लिए तथा संभावित युद्ध के मामले में ईरान को सिर्फ 12 न्यूक्स से कम परमाणु की आवश्यकता होगी ताकि इसराइल जैसी छोटी सी जगह को नक्शे से पूरी तरह से मिटा दिया जा सके।
मोहम्मद यासीन साहब ने काफी इस क्षेत्र में जो है दीदी पढ़ा है और उसके हिसाब से उन्होंने कमेंट किया है बहुत ही स्टडी के बाद। यासीन साहब ये तमाम चीजें अपनी यहाँ पर है, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ईरान का शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है वो ये कि वो परमाणु जो है वो हथियार ईरान में जो हम इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता है उन्होंने वर्जित जो है करार दिया है। तो ईरान कभी भी परमाणु हथियारों के पीछे नहीं गया, हाँ परमाणु टेक्नोलॉजी के पीछे ईरान गया है और वो भी शांतिपूर्ण, जो यहाँ के विकास यहाँ की जनता के लिए लाभदायक हो उनके पीछे गया है। और दूसरे ये कि ईरान कभी भी किसी भी देश पर ईरान का इतिहास रहा है कि उसने हमला नहीं किया है और हमेशा शांतिपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की। हाँ अब कभी कोई आएगा दीदी और उसको छेड़ेगा तो कहते हैं कि शेर के पिंजरे में जब हाथ डालेगा कोई तो बहरहाल शेर जो है वो शेर है उसको जो है जरूर काटेगा और जो दोस्त होते हैं उनको कभी कोई शेर भी नहीं काटता अगर कोई शेर का अपना दोस्त होता है। जी दीदी आगे बताइए।
चीन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण से अमेरिका को भी कर दिया हैरान। इस पर अली लिखते हैं, ईरान को अपनी पृथ्वी को भेदने वाले परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए जो अमेरिका की मुख्य भूमि में छिपे हुए लक्ष्यों को नष्ट कर सकें।
अली जी आपकी बात सही है, आपके जज्बात जो हैं वो हम समझ रहे हैं
जी।
लेकिन हमने जैसे पहले कहा ईरान ने स्पष्ट कर दिया
बताया
है,
भी था जो बिल्कुल
केवल ईरान के सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियारों को वर्जित करार दिया है इसलिए ईरान कभी भी इस क्षेत्र में आगे नहीं जाएगा
जी। इसराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हसन नसरुल्ला। इस पर हुसैन मेहदी लिखते हैं, खैर जब ईरान ने ईसाई अर्मेनिया का बचाव किया और हिजबुल्ला ने लेबनान में ईसाइयों का बचाव किया तो ये इस्लामिक प्रतिरोध की तरह दिखता है जैसे कि दाएश को खत्म करने में सबसे आगे होने पर फिर से इस क्षेत्र में प्राचीन ईसाइयों का प्राथमिक रक्षक है।
बिल्कुल बिल्कुल बात आपने सही कही है, ईरान का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है हुसैन मेहदी जी कि ईरान कभी भी युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है और युद्ध की आग को भड़काता नहीं, यानी भड़की हुई आग जो युद्ध की होती है उसको शांत करना चाहता है। और ये इंसाफ में और न्याय में कभी ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला किस धर्म से है और किस धर्म से नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए पूरी तरह ईरान अपनी जो ईरान की नीति है जो इस्लामी क्रांति शांति की व्यवस्था है वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है। धर्म और मजहब जो है वो जो होता है वो इंसान के अपने लिए होता है,
इंसानियत
होनी, इंसानियत होनी चाहिए, और जो ईरान ने हमेशा सबके सामने पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। तो श्रोताओं हमारा अब एक छोटा सा
ब्रेक है,
ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दीदी आगे हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
तो भैया अब हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने एक दोस्तों की बातचीत को पेश करने जा रहे हैं।
दीदी तो, एक दोस्त तो होगा एक दोस्तों नहीं होगा, तो चलते हैं कि अपने किसी
जी दोस्त तो बहुत सारे हैं लेकिन एक दोस्तों की बातचीत
बिल्कुल दोस्तों की बात दोस्तों में से किसी एक दोस्त को चुनते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। जी
तो ये है लखनऊ से परवेज, सैयद परवेज, तो चलते हैं इनकी बातचीत सुनते हैं।
मैं सैयद परवेज हिंदुस्तान के एक मशहूर शहर लखनऊ से हूँ। मेरा ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है, पत्रकारिता से है, और पिछले 16-17 सालों से मैं भी पत्रकारिता करता चला आ रहा हूँ। ईरानी पत्रकारिता को मैंने देखा कि बड़ी साफ सुथरी, हमको लगता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में सबसे अच्छी पत्रकारिता, या अरब कंट्रीज एशिया कंट्रीज में मिला के जो पत्रकारिता हो रही है ईरान की, बहुत साफ सुथरी सुलझी पत्रकारिता जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक तरफा पत्रकारिता जैसे कि अन्य देशों में दूसरे देशों में देखी जा सकती नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी पत्रकारिता। इसलिए बहुत ही चाव से रानी जो वेबसाइट है उसको देखता हूँ, तेहरान रेडियो सुनता हूँ। और ये आपको एक बात और बता दूँ कि ये हमारे इसको कहने की खून में है ये चीज़, क्योंकि हमारे वालिद वालदा 1980 से 1988 के बीच जब ईरान इराक की जंग चल रही थी तो 9 बजे रात रेडियो लेके बैठ जाते थे, और तो वो वालिद और वालदा जब सुना करते थे वही शायद हमारे में खून में आया कि ईरान में क्या हो रहा है जानना बहुत ज़रूरी है। और यही है कि शायद आज जर्नलिज्म से मैं भी हूँ, हिंदुस्तान में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, और साफ सुथरी पत्रकारिता यहाँ भी है, मगर बेहतर जो पत्रकारिता हमको लगी है बहुत साफ सुथरी है ईरान के लिए।
तो दोस्तों आपने सैयद परवेज साहब की बातचीत सुनी और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं की तरफ इशारा किया है, लेकिन अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा समय अब यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने भैया रविश को और दीदी मरियम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर। दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम दुनिया में नैनो तकनीक में ईरान के चौथे स्थान और एक आधुनिक यंत्र की मदद से मरीजों की मौत के समय का अंदाजा लगाए जाने के विषय पर चर्चा करेंगे। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। नैनो तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के देशों के वैज्ञानिक उत्पादों के स्तर के बारे में 3 साल पहले एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसके आधार पर ईरान इस क्षेत्र में 4th नंबर सुरक्षित रखने में सफल रहा है। इस्लामी जगत में वैज्ञानिक दस्तावेजों की साइट के संस्थापकों का कहना है कि वर्ष 2017 में नैनो तकनीक से संबंधित 1,54,000 से अधिक लेख वेब ऑफ साइंस नामक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए, जिनमें लगभग 50% लेख चीन, अमेरिका, भारत, ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के थे। और ईरान ने 8,791 लेख लिखकर नैनो तकनीक के उत्पादन में अपना 4th स्थान सुरक्षित रखा था। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ईरानी वैज्ञानिकों और संस्थाओं के क्रियाकलापों पर नजर डालने से ये बात समझ में आती है कि पेटेंट संस्था में और अमरीकी ट्रेडमार्क के क्षेत्र में वर्ष 2017 में 13 चीजें पेटेंट हुई, जबकि वर्ष 2016 में केवल 10 चीजें पेटेंट हो सकी थीं। नैनो का अर्थ है ऐसे पदार्थ जो अति सूक्ष्म आकार वाले तत्वों अर्थात मीटर के अरबवें हिस्से से बने होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अणुओं और परमाणुओं की इंजीनियरिंग है जो भौतिकी, रसायन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों को आपस में जोड़ती है। 21वीं सदी नैनो सदी बनने जा रही है। आज वस्तुओं के आकार को छोटा और मजबूत बनाने की होड़ सी मची हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीक विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शोध हो रहे हैं। अति सूक्ष्म आकार, बेजोड़ मजबूती और टिकाऊपन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटो, बायोसाइंस, पेट्रोलियम, फोरेंसिक और डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं बन रही हैं। अभी हाल ही में विज्ञान और नैनो तकनीक के क्षेत्र में एक ईरानी युवा वैज्ञानिक ने इंजीनियरिंग विज्ञान में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। मोहसिन इस्माइली ने सामग्री और फूड इंजीनियरिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल संघ, एक्टा मेरियल्टा साइंस सेंटर और अमेरिका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय धातु संस्थान से कई पुरस्कार हासिल किए हैं। ये पुरस्कार बड़ी संख्या में अल्ट्रालाइट एली के उत्पादन के क्षेत्र में काम करने पर दिए गए हैं। इस अल्ट्रालाइट एली ने गाड़ी और विमान उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। इस युवा ईरानी वैज्ञानिक का कहना है कि स्वीडन के ऊर्जा और पदार्थ शोध केंद्र ने माइक्रोस्ट्रक्चर के आधार पर नैनोमीटर बेस्ड एक शोध किया है। माइक्रोस्ट्रक्चर एक सामग्री की बहुत छोटे पैमाने की संरचना है, जिसे सामग्री की एक तैयार सतह की संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी पदार्थ की सूक्ष्म संरचना जैसे धातुएं, पॉलीमर, मिट्टी के पात्र या कंपोजिट और ताकत जैसे भौतिक गुणों को दृढ़ता से प्रभावित कर सकते हैं। जैविक नमूनों के नैनो स्ट्रक्चर को अल्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। किसी सामग्री के यांत्रिक और भौतिक गुणों पर एक माइक्रोस्ट्रक्चर का प्रभाव मुख्य रूप से संरचना के मौजूद या अनुपस्थित विभिन्न दोषों द्वारा नियंत्रित होता है। ये दोष कई रूप ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिक हैं छिद्र। अगर वे छिद्र किसी सामग्री की विशेषताओं की परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो वे इसकी संरचना है। वास्तव में कई सामग्रियों के लिए एक ही समय में विभिन्न चरण मौजूद हो सकते हैं। इन चरणों में अलग अलग गुण हैं और यदि सही ढंग से प्रबंधित किया जाता है तो सामग्री के फ्रैक्चर को रोका जा सकता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है जो बीमारों की मौत की लगभग
90% तक सही ढंग से भविष्यवाणी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये यंत्र आईसीयू में भर्ती विशेष बीमारों के लिए है जिनकी हालत बहुत खराब होती है, और इस यंत्र के बनाने का मकसद ये पता लगाना होता है कि ये उक्त मरीज कब तक जिंदा रहेगा या कितने महीने या साल तक वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सकता है। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम न्यूरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूरोलॉजी मेडिकल साइंस का वो विभाग है जिसमें तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं का इलाज होता है। न्यूरोलॉजी नॉन सर्जिकल विभाग है। तंत्रिका तंत्र के इलाज के लिए सर्जरी के विभाग को न्यूरोसर्जरी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं। तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों से संबंधित विकारों का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब सवाल ये उठता है कि न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श कब करें। कभी कभी गर्दन में होने वाला आम दर्द भी तंत्रिका तंत्र का विकार हो सकता है, अगर इसका मेल मूत्राशय की कमजोरी से है। सोचने में तकलीफ या मानसिक बदलाव भी तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हैं। ऐसी किसी भी समस्या के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करें। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले हमें न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के लक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। इसके आम लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे पैरालिसिस, दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, दृष्टि की समस्याएं, नींद की परेशानी और व्यक्तित्व में बदलाव। कई बार मरीज को सोचने में तकलीफ हो सकती है और कभी कभी अजीब चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। इंसेफलाइटिस या मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन की बीमारी बहुत ही कम लोगों को होती है, लेकिन जब ये पैदा होती है तो बहुत ही खतरनाक साबित होती है, और जब ये बीमारी जड़ पकड़ लेती है तो बीमार के व्यक्तित्व में काफी बदलाव हो जाता है और कमजोरी जैसे अलग अलग तरह के लक्षण सामने आते हैं। दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर को इंसेफलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये बुखार वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसका वायरस सुअर और मच्छर के माध्यम से लोगों में फैलता है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होता है। ये इस तरह फैलता है कि दिमागी बुखार जब किसी सुअर को क्यूलेक्स मच्छर, जो मच्छरों का एक प्रकार का वंश है, काटता है तो वो सुअर आरबो वायरस के कारण बुखार से पीड़ित हो जाता है। दिमागी बुखार के लक्षण ये हैं, जैसे पीड़ित को अचानक तेज बुखार आना, शरीर कांपना, लाल चकत्ते हो जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, शरीर में ग्लूकोज और पानी की कमी हो जाना इत्यादि। अगर मरीज इन हालात से दो चार हो गया है तो वो क्या क्या सावधानियां बरते। बच्चों को पानी की कमी न होने दें और धूप से बचाएं। बच्चे को बाहर की खुली चीजें खाने से रोकें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। बहुत दिनों के रखे फलों और सब्जियों को सेवन न करें। इसको चमकी बुखार भी कहा जाता है। चमकी बुखार वास्तव में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES है। इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। ये इतनी खतरनाक और रहस्यमयी बीमारी है कि अभी तक विशेषज्ञ भी इसकी सही सही वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। चमकी बुखार में वास्तव में बच्चों के खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो सकती है। गर्मियों में तेज धूप और पसीना बहने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इस वजह से डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, थकन, लकवा, मिर्गी, भूख में कमी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। चमकी बुखार के लक्षण भी ऐसे ही हैं। ये बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी एवं नमी के मौसम में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। इस मौसम में इसकी तीव्रता भी काफ़ी बढ़ जाती है। इंसेफ्लाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इनके सहारे शरीर के अंग काम करते हैं। जब इन कोशिकाओं में सूजन या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो इसे ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है। चमकी बुखार के वायरस जब शरीर में पहुंचते और खून में शामिल हो जाते हैं तो इनका प्रजनन शुरू हो जाता है। इसके बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। खून के साथ बहकर बीमारी के ये वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क में पहुंचने पर ये वायरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। इंसेफ्लाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है। किसी व्यक्ति के इस बीमारी से संक्रमित हो जाने के बाद उसके मलमूत्र, थूक, छींक आदि अर्थात शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में भी इंसेफ्लाइटिस के वायरस पहुंच सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस का ही एक रूप है जापानी बुखार, जो मच्छरों के कारण फैलता है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव के लिए आपको अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। चमकी बुखार के लक्षण दिखने के बाद तुरंत उसकी पहचान करें और घर पर सावधानी बरतने के साथ ही इस तरह का कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहराना इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान की डगर, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रसंघ में ईरानी प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया है। तेहरान की नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा कि अशांति के अलावा साम्राज्य का कोई लक्ष्य नहीं है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभरात्रि। Thank you.